उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जोहा चावल के बारे में जानकारी के साथ। जोहा चावल असम का एक मशहूर चावल है और देश विदेश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और हाल ही में जोहा चावल के निर्यात को लेकर भी मंजूरी मिली है और खास बात यह है कि ये चावल GI टैग प्राप्त है। तो आइए विस्तार से इस चावल के बारे में जानते हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए असम के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त जोहा चावल का पहला बड़ा निर्यात किया है। इस पहल के अंतर्गत 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली भेजा गया। यह खेप 12 मार्च को असम सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से रवाना की गई। इस अवसर पर असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने इस निर्यात को हरी झंडी दिखाई। यह पहली बार नहीं है जब जोहा चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा गया हो। इससे पहले भी प्राधिकरण ने इसके निर्यात को बढ़ावा देते हुए 1 मीट्रिक टन जोहा चावल वियतनाम और 2 मीट्रिक टन चावल खाड़ी देशों कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब को भेजा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक यह पारंपरिक भारतीय चावल धीरे धीरे वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। जोहा चावल असम की एक पारंपरिक और स्वदेशी किस्म है जिसे वर्ष 2017 में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ था। GI टैग मिलने से इस चावल की विशिष्टता को आधिकारिक मान्यता मिली और इसके नाम और गुणवत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह चावल मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक खुशबू और छोटे और महीन दानों तथा स्वादिष्ट गुणों के लिए जाना जाता है। जोहा चावल की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुगंध है जो पकने के बाद दूर तक महसूस की जा सकती है। इसकी खुशबू इतनी मनभावन होती है कि इसे अक्सर अरोमेटिक राइस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके दाने छोटे, गोल और मुलायम होते हैं जो पकने पर हल्के चिपचिपे लेकिन बेहद नरम हो जाते हैं। इस कारण यह चावल खाने में बहुत हल्का और सुपाच्य माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जोहा चावल लाभकारी माना जाता है। इसमें सामान्य चावल की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है जिससे यह मधुमेह के रोगियों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके अलावा इसमें आवश्यक खनिज तत्व और पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ पाचन में भी सहायक होते हैं। असम में जोहा चावल का उपयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है बल्कि यह वहाँ की संस्कृति और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास अवसरों, त्योहारों और पारंपरिक व्यंजनों जैसे पीठा और खीर में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सुगंध और स्वाद के कारण इसे प्रीमियम श्रेणी का चावल माना जाता है जिसकी मांग देश और विदेश दोनों में बढ़ रही है। उत्पादन की बात करें तो असम में जोहा चावल की खेती लगभग 21,662 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसका कुल उत्पादन लगभग 43,298 मीट्रिक टन रहा। राज्य के नागांव, बक्सा, गोलपाड़ा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट जैसे जिले इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी इस चावल की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। जोहा चावल के बढ़ते निर्यात से न केवल भारत की कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हो रही है बल्कि इससे स्थानीय किसानों की आय बढ़ने में भी मदद मिल रही है। प्राधिकरण और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब इस चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिल रही है जिससे आने वाले समय में इसके निर्यात में और वृद्धि की संभावना है।
हाल ही में नागालैंड में नवा यूथ फेस्टिवल समाप्त हुआ और इस यूथ फेस्टिवल में युवाओं ने एकत्र होकर पूर्वोत्तर भारत की जीवन संस्कृति को उजागर किया और इस यूथ फेस्टिवल के माध्यम से आठों पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति और युवा शक्ति का एक बेजोड़ मेल देखने को मिला और न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी कई युवाओं ने इस महोत्सव में भाग लिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में कि ये यूथ फेस्टिवल किस तरह से खास रहा।
पूर्वोत्तर भारत की जीवंत भावना 9वें नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल में पूरी तरह देखने को मिली। ये युवाओं की प्रतिभा, संस्कृति और एकता का भव्य उत्सव था। अष्टलक्ष्मी युवाओं और प्रगति की आठ शक्तियों का उत्सव। इस थीम के साथ आयोजित ये 5 वर्षीय कार्यक्रम नागालैंड सरकार के युवा संसाधन और खेल विभाग द्वारा 17 मार्च को चुमोकेदिमा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुआ और 21 मार्च को समाप्त हुआ। करीब 1200 प्रतिभागियों को साथ लाते हुए इस उत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के युवा भी देश भर से इसमें शामिल हुए जिससे ये मंच रचनात्मकता, कौशल और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का एक शानदार अवसर बना। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय किशोर और युवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम ने देश भर के युवाओं की ताकत और एकता को उजागर किया। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने इस उत्सव का उद्घाटन किया और युवाओं से अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों के दूत बनने का आह्वान किया ताकि वे आपसी सम्मान, सहयोग और समझ को बढ़ावा दें।
The most significant, your energy, ideas and talent are the driving forces behind innovation, progress and development. Every initiative, you want to say, every act of service and every creative expression contributes to humbling the image of the North.
इस उत्सव की पहचान को और खास बनाते हुए ग्रेट हॉर्नबिल को आधिकारिक शुभंकर चुना गया। नागा जनजातियों में इसे सम्मान और शान का प्रतीक माना जाता है। हॉर्नबिल शक्ति, ऊर्जा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अष्टलक्ष्मी समृद्धि और सशक्तिकरण के 8 रूपों का प्रतीक है। ठीक वैसे ही हॉर्नबिल युवाओं की ऊर्जा, साहस, धैर्य, नेतृत्व, रचनात्मकता, एकता, आत्मविश्वास, विकास और भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है। प्रतिभागियों ने अलग अलग राज्यों के युवाओं से मिलने और उनके साथ संस्कृति एवं विचारों का आदान प्रदान करने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।
मेरा नाम है बोया देव वर्मा और मैं त्रिपुरा से हूँ और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग बहुत इंजॉय करने की भी बहुत जगह मिला और जगह जगह क्या इतना जगह अच्छा है, इतना स्पॉट अच्छा है। आई लव यू माई नागालैंड सिस्टर एंड ब्रदर, थैंक यू।
जय हिंद, आई एम फ्रॉम गुजरात, माय सेल्फ सिद्धार्थ, एंड लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छा है, लाइक एवरीथिंग इज ग्रीन ग्रीन। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, मतलब आई एम स्पेशली वेजिटेरियन एंड इन्होंने जितना भी दिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली रहने की जगह अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके, यहाँ पे हमने कल्चरल शो देखे, कल्चरल एक्सचेंज एंड एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। एंड थैंक यू सेवन सिस्टर एंड वन ब्रदर टीम, थैंक यू फॉर नागालैंड फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
समापन समारोह में नागालैंड के उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री तिमजेन इमना अलोंग ने कहा कि ये क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पारस्परिक नृत्य और लोकगीतों से लेकर आधुनिक संगीत और कला प्रतियोगिताओं तक इस उत्सव ने पूर्वोत्तर भारत की विविधता और एकता को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। साथ ही युवाओं को खुद को व्यक्त करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही 9वें नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल का समापन हुआ, ये अपने पीछे खुशी, दोस्ती और सांस्कृतिक गर्व की यादें छोड़ गया। ये याद दिलाते हुए कि आज के युवा ही एक उज्जवल और एकजुट कल के मशाल वाहक हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से आसोनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के युवा फुटबॉल खेल में रुचि लेते हैं और पूर्वोत्तर भारत से कई युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है और अब पूर्वोत्तर भारत से और भी फुटबॉल के खिलाड़ियों की प्रतिभाएं निकलने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक खास घोषणा की है। इस घोषणा में उन्होंने कहा है कि ईटानगर में एक विश्व स्तरीय फुटबॉल ग्राउंड शुरू किया जाएगा और पीएम डिवाइन योजना के तहत इस फुटबॉल ग्राउंड को शुरू किया जाएगा। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ईटानगर में एक विश्व स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह स्टेडियम प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल पीएम डिवाइन के तहत बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने ये घोषणा अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर 23 ट्राई नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक शुरुआत करने के बाद की। श्री खांडू ने कहा कि निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य भर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने युवाओं को खेलों को गंभीरता से लेने और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री केंतोजी ने भी उपस्थित रहे। चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में ताजिकिस्तान ने भूटान को 1-0 से पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में 28 मार्च को भारत का मुकाबला भूटान से शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, अब हम यूथ फेस्टिवल के बाद बात करने जा रहे हैं एक और खास महोत्सव के बारे में। ये महोत्सव कहलाता है लाम पोखरी महोत्सव। दरअसल सिक्किम के पूर्वी हिस्से में एक झील है जो एक खास रमणीय स्थान है। ये लाम पोखरी झील है और इसी झील के नाम पर ये फेस्टिवल भी आयोजित होता है। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में इस बार भी सिक्किम की संस्कृति परम्परा का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। तो क्या कुछ खास रहा इस बार के लाम पोखरी फेस्टिवल में, आइए हमारे संवाददाता दिलीराम दिलाल की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
यह 3 दिवसीय महोत्सव विरासत का अनुभव, संस्कृति का उत्सव, प्रकृति की खोज विषय पर आधारित था, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों, उद्यमियों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी ने इसे जन उत्सव का रूप दिया। महोत्सव ने न केवल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया बल्कि युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर के द्वार भी खोले। इसके माध्यम से सिक्किम के पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। आरिटार दलपचन्द लामपोखरी झील पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम प्रधान ने सामुदायिक भागीदारी के महोत्सव पर बल देते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सामाजिक संजाल के माध्यम से सिक्किम के पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का आह्वान किया। उत्सव में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्थानीय उद्यमियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ लेप्चा ने आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए उत्सव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा,
पूर्वी सिक्किम के छुजाचिन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आरिटार में लामपोखरी झील है और यह पर्यटन उत्सव का विशेषता यह है कि यहाँ जो सिल्क रूट है, भारत चीन के जो पिछले जो कई शताब्दियों पुराने यह व्यापार जो सीमा व्यापार है, इसकी जो मार्ग है, जो पैदल मार्ग था उस समय और घोड़े खच्चर जो चलने का पत्थरों का जो मार्ग था यही होके जाता था और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समावित करके यहाँ पर्यटन उत्सव मनाया जाता है। 2006 में पहली बार यहाँ पर्यटन उत्सव का आयोजन हुआ था, लगातार रूप से चलती रही थी लेकिन विगत 7 वर्षों के दौरान जो कोविड के बाद यह उत्सव रुक गया था तो विगत 7 वर्षों से बंद थी तो इस वर्ष से पुनः आरंभ हुआ है। तो यहाँ कई सारे जो घरेलू पर्यटक हैं उनका आना जाना भी हो रहा है, कई अच्छे संख्या में यहाँ घरेलू पर्यटकों को पदार्पण हो रहा है और यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र में कई पर्यटकीय स्थल है जैसे कि शताब्दी पुराने बौद्ध मठ और इसी तरह राय समुदाय के जो मंदिर हैं मांखिम वो भी हैं और इन विशेषताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तहत इस उत्सव को आयोजन करने हेतु धनराशि सहित अन्य कई सहयोग भी प्रदान किए हैं और शायद सिक्किम में जो पर्यटन उत्सव का जो आरंभ हुआ था शायद यह पहली एक जगह है और यहाँ जो सिल्क रूट के तहत जो पश्चिम बंगाल के कालेबुंग व सिलीगुड़ी से होके जो रेसी प्रवेश द्वार है सिक्किम के वहाँ से आरिटार पहुँचाए जा सकते हैं और जो रंगली बाजार है यहाँ से करीब 9 किलोमीटर पास तो वहाँ से नथुला जो सीमावर्ती क्षेत्र है नथुला दर्रे हैं वहाँ घूमने जाने के लिए क्योंकि वह सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहाँ पास लगते हैं और बिना अनुमति के बिना आधिकारिक अनुमति प्राप्त किए बगैर वहाँ नहीं जाने दिया जाता है तो इसके लिए भी राज्य सरकार ने पहले गंगटोक से जारी होती थी तो पिछले 1 वर्षों से यही जो रंगली बाजार है वहीं से जारी करने हेतु अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है और कार्यालय भी स्थापित किया गया है जहां से नथुला दर्री और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे जुलूक कुपुक नाथांग छांगू और डोकलाम के लिए भी यहां से जाने का अनुमति दिया जाता है। यहाँ के जो लामपोखरी के कारण जो लामपोखरी झील में जो उत्सव आयोजन के कारण यहाँ कई पर्यटकों का आना और हर एक वर्ष पर्यटकों का इतना भी संख्या है वो वृद्धि हो रही है इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से कई सारे योजनाओं को भी लागू की हैं जैसे कि होम स्टे फार्म स्टे ग्रामीण पर्यटन ये सब के लिए भी धनराशि उपलब्ध की जाती है और इसके अलावा भी जैसे वाहनों की खरीदारी करने के लिए जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको मदद दी जाती है तो इस तरह जो जीविकापार्जन के साथ साथ व्यवसाय भी बढ़ रही हैं जो सिक्किम के अन्य पर्यटकीय स्थलों के तुलना में यहाँ इन दिनों अधिक संख्या में पर्यटकों का आना रहता है।
महोत्सव के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता हेतु लामपोखरी दौड़ कृषि एवं पर्यटन प्रदर्शनी वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। 3 दिवसीय इस महोत्सव ने सिक्किम की समृद्ध विरासत और पर्यटन संभावनाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। तो चलिए हम पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत, ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केइबोल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल या महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोह कलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1,115 फीट है। मॉनसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है।
चेरापूंजी और मासिन राम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खान पान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसके सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है, चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है, तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आंखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।